हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 18। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज अर्जुन भगवान से एक विनती कर रहे हैं। वे कह रहे हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिः श्रुण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दनम् भूयः कथयः तृप्तिः श्रुण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिः श्रुण्वतो नास्ति मे मृतम्। शब्दात् विस्तरेण अर्थात विस्तार से
ఆత్మనః అత్మీ, యోగం యోగ్ శక్తి, విభూతిం ఐశ్వర్యకో చ భీ జనార్దన. హే నాస్తికో కా వధ కర్నే వాలే, భూయః ఫిర్ కథయః కహే తృప్తిర్ హి, తృప్తి మతలబ్ సంతుష్టి, హి నిశ్చయ హి శృణవతః సునతే హువే నాస్తి నహీ హోతీ హై మే మేరీ అమృతం అమృత కో. అనువాద్ అర్జున్ కే రహే హై, హే జనార్దన్, ఆప్ పునః విస్తార్ సే అప్నే ఐశ్వర్య తథా యోగ శక్తి కా వర్ణన్ కరే, మే ఆప్కే విషయ మే సున్కర్ కభీ తృప్త నహీ హోతా హూ, క్యూంకి జితనా హీ ఆప్కే విషయ మే సున్తా హూ ఉత్నా హీ ఆప్కే శబ్ద అమృత కో చఖనా చాహతా హూ. శ్రీ ప్రభుపాద జీ బహుత్ హీ సుందర రీతి సే సమ్జాయేంగే. హమ్ సబ్ ధ్యాన్ సే శ్రీ ప్రభుపాద జీ కే ఇన్ శబ్దో కో శ్రవణ్ కరేంగే. శ్రీ ప్రభుపాద కీ జయ హో. శ్రీ ప్రభుపాద జీ కహతే హై, ఇసీ ప్రకార్ కా ఏక్ నివేదన్ నైమిషారణ్య కే శౌనక్ ఆది ఋషియో నే సూత గోస్వామి సే కియా థా. యహ నివేదన్ ఇస్ ప్రకార్ హై. శౌనక్ ముని సూత గోస్వామి సే కహతే హై, వయమ్ తు న వితృప్త్యామ ఉత్తమ శ్లోక విక్రమై యశ్వతాం రసజ్ఞానం స్వాదు స్వాదు పదే పదే. ఉత్తమ స్తుతియో ద్వారా ప్రశంసిత కృష్ణ కి దివ్య లీలాం కా నిరంతర శ్రవణ్ కర్తే హువే కభీ తృప్తి నహీ హోతీ. కింతు జిన్హోనే కృష్ణ సే అప్నా దివ్య సంబంధ స్థాపిత కర్ లియా హై, వే పద్ పద్ పర్ భగవాన్ కి లీలాం కే వర్ణన్ కా ఆనంద లేతే హై. శ్రీమద్ భాగవతం 1.1.19. అతః అర్జున్ కృష్ణ కే విషయ మే ఓర్ విశేష రూప్ సే ఉన్కే సర్వవ్యాపీ స్వరూప్ కే బారే మే సున్నా చాహతా హై. జహాన్ తక్ అమృతం శబ్ద కీ బాత్ హై, కృష్ణ సంబంధీ కోయి భీ ఆఖ్యాన్ అమృత తుల్య హై. ఔర్ ఇస్ అమృత కీ అనుభూతి వ్యవహార్ సే హీ కీ జా సక్తీ హై. ఆధునిక కహానియాం కథాయేం తథా ఇతిహాస్ కృష్ణ కీ దివ్య లీలాఓ సే ఇస్లియే భిన్న హై క్యూంకి ఇన్ సంసారీ కహానియో కే సున్నే సే మన్ భర్ జాతా హై. కింతు కృష్ణ కే విషయ మే సున్నే సే కభీ థకాన్ నహీ ఆతీ. యహ కారణ హై కి సారే విశ్వ కా ఇతిహాస్ భగవాన్ కే అవతారోం కీ లీలాఓ కే సందర్భో సే పటా హువా హై. హమారే పురాణ విగత యుగోం కే ఇతిహాస్ హై, జిన్మే భగవాన్ కే వివిధ అవతారోం కీ లీలాఓ కా వర్ణన్ హై. ఇస్ ప్రకార్ బారంబార్ పఢనే పర్ భీ విషయ వస్తు నవీన్ బనీ రహతీ హై. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ హో. మూకం కురు తు వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీగురూన్ దీనతారణం. శ్రీమద్ భగవద్గీత జో కే సమస్త శాస్త్రోం కా సార్ హై. ఔర్ ఇస్ భగవద్గీతా కే 10వే అధ్యాయ కో విభూతి యోగ కహా జాతా హై, జిస్మే భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ అప్నీ విభూతియోం కో విస్తార్ సే బతాతే హై. ఔర్ ఆజ్ అర్జున్ భగవాన్ సే యే నివేదన్ కర్ రహే హై కి కృష్ణ ఆప్నే ముజే బహుత్ కుచ్ బతాయా, జైసే ఆప్నే ముజే సాంఖ్య యోగ బతాయా, కర్మ యోగ బతాయా, ధ్యాన యోగ బతాయా, ఔర్ 7వే సే లేకర్ 9వే 8వా 9వా యే సబ్ భక్తి యోగ కే విషయ మే బతాయా. ఆప్నే అప్నే విషయ మే బతాయా తో సహీ, లేకిన్ బహుత్ సంక్షిప్త్ మే బతాయా. లేకిన్ मेरा क्या है, मैं जितना जितना आपके विषय में सुन रहा हूँ उतना उतना आपके इस शब्दामृत को और भी पीने की इच्छा हो रही है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से एक निवेदन किया, विस्तरेणात्मनो, विस्तार से बताओ। यह बहुत हैरत की बात है, अर्जुन युद्ध स्थल में खड़ा है, युद्ध का शंख बज गया है, बस युद्ध धनुष है ना वो उठाकर उसको खींच के बाण छोड़ने की देर है बस। और इस समय अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, विस्तार से मुझे अपनी विभूतियों के विषय में बताओ। कितनी हैरत की बात है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगवान की कथा जब कोई श्रवण करता है तो वो इतनी मीठी है, भगवान के शब्द इतने मीठे हैं, इतने रसमयी हैं कि एक बार कभी कोई सुन लेता है तो सारी जो आगे पीछे की जो चिंताएं हैं ना वो समाप्त हो जाती हैं। अमृत का यहाँ पर कि श्रुणवतो नास्ति मेमृतम, आपकी कथाओं को श्रवण करते ही तृप्त्र ही श्रुणवतो नास्ति मेमृतम, मेरी संतुष्टि हो ही नहीं रही है। जितना अधिक श्रवण कर रहा हूँ तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं और भी अधिक श्रवण करूं। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि इस भौतिक जगत में जब हम कथा सुनते हैं तो जैसे जैसे कथा बढ़ती है ना तो हम बेजार होने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी ना एक घंटा हो गया, अभी तो लगे चुप नहीं कर रही है, अब इसको कथा बंद करनी चाहिए ना, इतनी देर तक क्या कथा करनी, थोड़ा देर कथा करनी चाहिए, बस 20-25 मिनट, आधा घंटा और मैक्सिमम पौना घंटा, घंटे से ऊपर कथा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ अर्जुन इतनी देर से, अभी 10वां अध्याय चल रहा है तो यूं समझो कि एक घंटे से तो ऊपर हो गया होगा ना। और वो भी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो कितना काम है, अभी दूसरे भी काम है और ये कथा पे बैठे रहेंगे क्या इतनी देर तक। अर्जुन के सिर पर मौत मंडरा रही थी, अर्जुन उस युद्ध के मैदान में खड़ा था जहां पर चारों ओर उसे हत्या दिख रही थी, उसे मृत्यु दिख रही थी, और उस समय अर्जुन भगवान से कह रहा है, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, आपकी विभूतियों को आराम से बताओ, विस्तार से बताओ, बहुत बहुत बताओ, क्योंकि मैं भूया कथया तृप्त ही श्रवतो नास्ति मेमृतम, तुम्हारी इन कथाओं को श्रवण करके क्योंकि ये अमृत से भरी हुई है मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तो फिर यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, हमें क्यों नहीं आनंद आता भगवान की कथा श्रवण करके, हमें क्यों ऐसा लगता है कि बस अब कथा को विराम मिलना चाहिए, बस अब कितना बोलेगा, बस न सुन लिया। अब कितनी देर, टाइम भी देखते हैं जब कथा में जाते ना, फिर देखते हैं 9:30 बजे कथा खत्म होगी तो अभी है ना, अभी तक 10 मिनट है, सुनना पड़ेगा ऐसा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, विस्तार से बताओ। इसका कारण क्या है? वो कारण अर्जुन ने आगे पहले बता दिया श्लोक नंबर 12 में। भगवान से कहा, परम ब्रह्म परम नाम पवित्रम परम अम्भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, कि मैंने मान लिया है कि तुम परब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो, परम भवान हो, पुरुषम हो, शाश्वतम हो, दिव्य हो, समस्त देवताओं के आदि हो, अजम हो, विभु हो। जब कोई व्यक्ति, कोई जीव जब इस बात को बिलीव करता है, इस बात में श्रद्धा रखता है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो कि मेरा कल्याण कर सके, जब किसी को यह विश्वास हो जाता है कि केवल कृष्ण कथा ही एक ऐसी वस्तु है जिससे मेरा कल्याण होगा, जब किसी को यह विश्वास हो जाता है, इस बात पे श्रद्धा हो जाती है कि कृष्ण कथा श्रवण करने के अतिरिक्त और कहीं पर भी किसी भी कार्य से मेरा कल्याण नहीं होगा, तब वो ये बात कह सकता है कि भगवान की कथाओं को मुझे विस्तार से सुनना है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं भूयः। भूयः माना पुनः कहिए, पहले आपने थोड़ा संक्षिप्त में कहा है, अभी इसको आप और भी विस्तार से कहिए। भूयः कथयः तृप्तिर्हि, अभी कथन करते रहिए इन इन बातों को, अपनी विभूतियों को, अपनी योग शक्ति के विषय में बोलते रहिए, क्योंकि श्रणवतो नास्ति मे मृतम्, आपकी कथाओं में ऐसा अमृत है कि जितना अधिक पी रहे हैं उतना अधिक आनंद आ रहा है। स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक शब्द को श्रवण करके आनंद आ रहा है, एक एक श्लोक को सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। अब आप चुप मत बैठिए, आप और बताइए, पुनः कहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसा ही निवेदन जो है वो नैमिषारण्य केशव ने आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से भी किया था। उन्होंने भी यही कहा, वयम तो न वितृप्त्यामा, हम तृप्त हो नहीं रहे हैं। उत्तम श्लोक विक्रमे, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि भगवान की कथाएं उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान की लीलाएं कोई साधारण नहीं है। जो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, वो उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुतियां करते हैं। तो यश श्रवताम रसज्ञानाम, तो इन भगवान की विषय में जब हम श्रवण करते हैं तो उसका रस जो है वो साधु स्वादु पदे पदे हर एक क्षण में बढ़ रहा है। इस भौतिक जगत की और भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अंतर बताया जा रहा है। इस भौतिक जगत में आप कोई एक स्टोरी एक बार सुनोगे तो आपको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी, मजा आया। जैसे एक मूवी आप पहली बार देखते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, नई मूवी होती है, उसको जब दूसरी बार आपके फ्रेंड जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, यार मैंने नहीं देखी मेरे साथ चलो, तो भी आपको अच्छी लगेगी। चलो ठीक है, क्योंकि उसने और लोग ने नहीं देखी है, आपने देखी है, तो आपको थोड़ा सा और भी एक्साइटेड होके उनको थोड़ा थोड़ा गाइड भी कर रहे हो कहीं ऐसा। और उसके बाद तीसरी दफा आपको जाना पड़े फैमिली के साथ तो भी आप देख लोगे, चौथी दफा पांचवी दफा ऐसे करते करते अगर आपको छठी दफा कोई लेकर जाएगा ना तो आप बोलोगे मैं आपके पांव पड़ता हूँ, अभी मुझे ये मूवी नहीं देखी, देख देख के पक गया हूँ, अभी मुझे नहीं देखनी है। और ये भगवान की कथा है, भगवान की जो लीला है। अभी देखो, इस भौतिक जगत का कोई साधारण बच्चा होता है, अभी भौतिक बच्चा और आध्यात्मिक कृष्ण, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। वही कार्य, वही इज दिस कार्य, अगर कोई साधारण बालक करता है, आता है घर पे, वो रो रहा होता है, मम्मी उसको स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, और फिर वो अगर उसको छोड़ के चली जाती है कोई दूसरा काम करने, वो रो रहा होता है, या फिर कोई उत्पात खड़ा कर देता है, कोई मटकी फोड़ देता है, या फिर कुछ और गिरा देता है, तो स्टोरी सुनकर आपका कोई लाभ नहीं होगा। वही एज दिस कार्य जब कृष्ण करते हैं, वो जब माता यशोदा को ये बताते हैं कि मुझे भूख लगी है मैया, मुझे दूध पिलाओ, और मैया जब उनको दूध पिलाते हुए अतृप्त रख के चली जाती हैं, और वो जो चूल्हे पे दूध उबल रहा है उसको बंद करने के लिए जाती हैं, और कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं, मैया उन्हें रस्सी से बांधती हैं, ये कथा यदि आप करोड़ दफा भी सुनोगे तो सुनने में आपको आनंद आएगा। वो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आपको इस बात पे विश्वास है कि मैं ये जो बात सुन रहा हूँ वो किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये कृष्ण लीला सुन रहा हूँ मैं। जब आपको इस बात पे विश्वास है कि मैं कृष्ण लीला सुन रहा हूँ और कृष्ण लीला श्रवण करके ही मेरा कल्याण होगा, फिर आप चाहे वो ही कहानी, वो ही स्टोरी आप हजार दफा भी सुनो, लाख दफा भी सुनो, तो भी वो आपको आनंद देगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा कल्याण इसी में है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मिठाई में रसगुल्ला अच्छा लगता है और उसको एक रसगुल्ला खिलाया जाए, उसको मीठा लगेगा, दूसरा वाह आज दो, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, अगर 10 रसगुल्ले उसको खिला दिए जाए ना तो वो उल्टी करना शुरू कर देगा, बोला बस अब मैं कम से कम
एक हफ्ते तक रसगुल्ले का नाम नहीं लूंगा, अब मैं मुझे रसगुल्ला देख के उल्टी आ रही है, अभी मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। लेकिन वही व्यक्ति जो है वो एक दिन भी रोटी खाता है, दूसरे दिन भी खाता है, तीसरे दिन भी, रोज रोज रोटी खाता है, रोटी के साथ सब्जी खाता है, तो उसको क्या पता है, क्योंकि रोटी खाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, रोटी खाऊंगा तो उसी से मुझे ना पावर मिलेगा, रोटी अनाज राइस रोटी चपाती ये सबको खानी होती है ना, तो उसी तरह से आत्मा का कल्याण किससे होगा, यही सवाल पूछा था नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से। उन्होंने कहा था, बहुत सारे प्रश्न पूछे और उनमें से ये बोला कि आपने तो बहुत कुछ सुना है, आपने वेद व्यास जी से शिक्षा ली है, आपने आपको श्री बलराम जी की कृपा प्राप्त है, आपने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, तो उन सब में से आप निचोड़ निकाल के बताइए। तत्र तत्रं जसा युष्मन् भवता यद् निश्चितम् पुंसाम् एकांततः श्रेयः तन्नः संशितम् अर्हसि। आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, तो तत्र तत्र अंजस आयुष्मान, तो आपने इतना कुछ जो सुना है उसमें जो अंजस हो, अंजस मतलब बहुत ज्यादा सरलता से समझ में आने वाला हो, एकांततः श्रेय, एकांतता वन एंड ओनली, एक ही एक ऐसा साधन बताओ, एक ही काफी हो, श्रेय जिससे जीव का कल्याण हो सके, तन्ना संशित मरहसी, हम वही सुनना चाहते हैं, बस एक ही बात बताओ, जो कुछ सारा कुछ समस्त शास्त्रों में आपने पढ़ा उसकी सारभूत वस्तु क्या है, जिससे सारे जीवों का परम कल्याण हो, वो साधन बताओ। और फिर आगे उनसे उन्होंने कहा कि शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें बताई हैं, भूरिणी भूरि कर्माणी श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत् सारम, जो कुछ इतनी सारी शास्त्रों में लिखे गए हैं, यज्ञ लिखे गए, दान दिए गए, तपस्या, ये सब बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन उनका सार बताओ, समुद्धृत्य मनीषणा, जिससे सारे जीवों का वास्तविक उद्धार हो। हम जानते हैं कि ये सब जो भी दूसरे कार्य शास्त्रों में वेदों में लिखे हुए हैं उनसे तो केवल शरीर का कल्याण होगा, परंतु आप हमें ये बताओ, ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति, ये उनका सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने कहा ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति, आप वो बताइए जिससे जीवों की वास्तविक जो आत्मा है उसका कल्याण कैसे होगा, उसके विषय में बताओ। क्योंकि वेदों शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि आपको ये मिल जाएगा तो संसार में सुखी हो जाओगे, ये मिल जाएगा, लेकिन संसार में सुखी होने की बात मत बताइए, ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति, जिससे आत्मा का कल्याण हो वो बात बताइए। तब सूत गोस्वामी शून्य कृष्णों को कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति अदोक्षजे अहितुकिया प्रतिहिता ये आत्मा सुप्रसीदति, अगर तुम आत्मा के कल्याण की बात पूछ रहे हो तो उसके लिए एक ही कार्य करना है, सवै पुंसाम परो धर्म, अब तुम अपरा प्रकृति से परा प्रकृति के कल्याण के विषय में पूछ रहे हो तो परो धर्म बता रहा हूं मैं तुमको, जो आत्मा का कल्याण है, और वो क्या है, परो धर्म यतुर्भक्ति अदोक्षजे, अदोषण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही वास्तव में आपकी आत्मा का वास्तविक कल्याण किससे होगा, कि अहितुकी या प्रतिहिता, आपको भगवान की भक्ति कैसी करनी है, अहितुकी करनी है, उसकी बदली में आपका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई आप उसकी बदली में आपको कुछ नहीं चाहिए, और उसके अलावा अहितुकी अप्रतिहिता, वो अखंडित भक्ति ना, मतलब अखंडित होनी चाहिए, डिसकंटिन्यू ना हो, कंटिन्यूअस भक्ति करो, और इसी से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। तो मानो उन्होंने पूछा कि ये भक्ति कैसे की जाती है, तब उन्होंने कहा, सूत गोस्वामी ने बताया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, जो भी आपके अभद्र हैं इस कलयुग में, आप जब जी रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है ना, जिसके कारण आप भगवान से अपने प्रेम की प्रेम को पुनः स्थापित नहीं कर पा रहे हो, वो सारे अभद्र आपके हृदय में जो मलिनता है वो सब समाप्त हो जाएगी। किससे? नित्यम भागवत सेवा। नित्य मतलब कंटिन्यूस एक ही काम करो, क्या? भागवत सेवा, भागवत श्रवण करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और इससे क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप श्रवण करते जाओगे, आप कब पवित्र हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, आपके सारे अभद्र हैं वो नाश हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नाष्टिकम्। और जब सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे तो फिर पुण्य श्लोक भगवान में जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, भगवत भक्ति भगवती उत्तम श्लोके, दिव्य गीतों से जिन भगवान की प्रशंसा की जाती है उनके लिए भक्तिर भवति नाष्टिकम्, अटल प्रेम भक्ति आपके हृदय में स्वतः स्थापित हो जाएगी। भगवान के लिए प्रेम जो है वो जीव के हृदय में स्टार्ट से है। जिस तरह जीव के हृदय में भगवान शुरू से रहते हैं, भगवान कहते हैं अहम सर्वेश अहम, मैं समस्त जीवों के हृदय में बैठा रहता, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जिस प्रकार हृदय में भगवान बैठे हुए हैं उसी तरह हृदय के अंदर भगवान के लिए प्रेम भी सदैव से है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम जितना जितना भौतिक वस्तुओं के बारे में सुनते जाते हैं, उनके बारे में चिंतन करते रहते हैं, तो उन्हीं के विषय में हमारा आकर्षण होता है, उन्हीं के लिए हमारा हृदय के अंदर जो भगवान का प्रेम है वो चेंज होकर उनमें लग जाता है। जैसे भगवान ने स्वयं बताया, संगात संजायते कामा, जिस भी वस्तु का संग करोगे उसी के लिए इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, उसी को प्राप्त करने की, उसी के साथ रहने की, उसी के साथ रहने की आपको इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं मुझे यही चाहिए। और क्योंकि आज का जीव क्या करता रहता है, किसके विषय में श्रवण करता रहता है, किसका संग करता है, ध्यायतो विषयान, वो सदैव विषयों के विषय में चिंतन करता रहता है। आंखों को ये अच्छा लगता है, कर्णों को ये अच्छा लगता है, जिह्वा को ये खाना अच्छा लगता है, इंद्रिय को ये अच्छा लगता है, स्पर्श को, तो फिर वही चीजों की ओर आकर्षण बना रहता है, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान बोलते संगस्तेषु पजायते, अगर विषयों का चिंतन करोगे, विषयों के बारे में सुनोगे, विषयों के बारे में ही सोचोगे, तो फिर क्या होगा, उसी उन्हीं विषयों को प्राप्त करने की इच्छा होगी। क्योंकि संगा संजायते कामा, जिसके विषय में श्रवण करते जाओगे उसके विषय में आपके हृदय के अंदर कामना उत्पन्न होगी। जैसे हम घर पे बैठे होंगे, किसी भी वस्तु के विषय में समझो अभी नहीं सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, अचानक से एक एड आती है, एक टीवी पे एड आ रही होती है कि भाई गुल अहमद के लॉन के सूट्स जो हैं वो उनकी सेल लगी हुई है 50% ऑफ में। आपके हृदय के अंदर फौरन से एक इच्छा होगी, चलो गर्मियां आ रही हैं तो मैं भी 4-6 ड्रेसेस ले लूं, है ना। ऐसा इच्छा फौरन से जैसे आपने संग किया, एक कान के अंदर गई बात और फौरन से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, हाँ मुझे भी लेना। तो उसी तरह से कृष्ण प्रेम के विषय में जब हम कृष्ण की कथाओं को श्रवण करते ना, तो हृदय के अंदर जो कृष्ण का प्रेम है ना वो जागृत हो जाता है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नाष्टिकीम। और जैसे जैसे सुनते जाएंगे, जितना जितना सुनते जाएंगे, तो भगवान के प्रति हमारी नाष्टिकी भक्ति होती जाएगी। आज हमें इच्छा नहीं हो रही है भगवान के विषय में श्रवण करने की, उसका कारण ये है कि बहुत बहुत जन्मों तक क्योंकि हमने भौतिक विषयों को ही सुना है ना, तो भौतिक विषय ही आकर्षित कर रहे हैं। ये वास्तव में जीव की रुग्ण अवस्था है। रुग्ण अवस्था मतलब बीमार अवस्था है कि आपकी जीव आत्मा की वास्तविक आनंद की स्थिति क्या है, कि वो कृष्ण से प्रेम करे बस। जब वो कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहा है, कृष्ण के विषय में नहीं श्रवण करना चाह रहा, इसका मतलब होता है कि वो रोगी है। और उसको रोग हो गया है, जिस तरह से जैंडिस का मरीज होता है, उसको अगर आप मिश्री की डली चूसने के लिए दोगे ना, तो उसको मीठी नहीं लगेगी, वो बोलेगा नहीं ये मुझे मीठी नहीं लग रही। अब मिश्री तो मीठी होती है ना, फिर उसको मीठी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि उसको जैंडिस है। फिर डॉक्टर को बोलोगे इसको तो मीठी नहीं लग रही, डॉक्टर बोलेगा मैंने इलाज तो कर दिया है, अब इसके मुंह का टेस्ट तब ऐसे ही आप मीठा मीठा खिलाते जाओगे तो फिर ये चूसते चूसते इसको मीठा लगने लगेगा। तो अभी हम भी क्योंकि पता नहीं कितने अनेकों जन्मों से भौतिक विषयों की आकर्षित की ओर आकर्षित हैं, उनका ही आनंद लेते आए हैं, तो भगवान की कथाओं में हमें रस नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सुनते जाते हैं सुनते जाते हैं सुनते तो क्या होता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, धीरे 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 हमारे जो ये बीमार अवस्था है, बीमार अवस्था क्या है कि हृदय के अंदर रजोगुण और तमोगुण जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। रजोगुण में क्या, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और तमोगुण में क्या कि मुझे कुछ करना नहीं है। और ये जो अज्ञानता और रजोगुण जो हमारे हृदय में बहुत ज्यादा घर कर गया है उसको खत्म करना है। तो वो कैसे होगा उसी के आगे बताते हैं 1.2.19 में सुख गोस्वामी कहते हैं, तदा रजस्तमो भाव काम लोभाय दयस्ये चेत एतैरना रिद्धिम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भाव, इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप की कथाओं को श्रवण करोगे भगवान की, तो फिर क्या होगा आपके हृदय में भगवान के लिए नैष्ठिक की भक्ति उत्पन्न होगी, और जब भक्ति उत्पन्न होगी तो जो ही हृदय में नैष्ठिक की प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव यथा काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तथा रजस तमो भावो काम लोभाय दस, काम लोभ और है ना ईर्ष्या क्रोध ये सब स्वतः समाप्त हो जाए। आपका कुछ नहीं करना है, आपको हृदय की ओपन हार्ट सर्जरी करके उसके अंदर से काम को क्रोध को मद मात्सर्य को ईर्ष्या को निकालना नहीं है, वो स्वयं ही भाग जाएंगे। जिस प्रकार अभी बहुत तेज डार्क अंधेरा हो एक रूम में, और आप अगर वहां पर खिड़की मतलब पूरा खिड़कियां बंद हो और पूरा अंधेरा लगा हो और बाहर बहुत तेज सूर्य चमक रहा है, आप खिड़की का यदि पर्दा हटा लोगे खिड़की खोल लोगे तो सूर्य प्रकाश जैसे ही रूम में आएगा तो क्या आपको अंधकार को बोलना पड़ेगा, अंधकार अब आप यहां से निकल जाओ क्योंकि यहां पर सूर्य आ गया है बोलना पड़ेगा? नहीं, अंधकार तो सूर्य के प्रकाशित को प्राप्त होते ही सूर्य का प्रकाश रूम में आएगा तभी अंधकार जो है वो छू मंतर हो जाए। उसी प्रकार भगवान की कथाएं जो हैं वो सूर्य प्रकाश की तरह है। ऐसा भागवतम में बताते हैं वेद व्यास जी कि भगवान श्री कृष्ण सोमवंश में पैदा हुए थे, सोमवंश यानी चंद्रवंश में पैदा हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से अपनी लीला को सिमेट कर चले गए अपने आध्यात्मिक धाम में, तो भगवान के ये जो लीला है जो श्रीमद् भागवतम है वो सूर्य की तरह प्रकाशमान है। तो जहां पर हम भगवान की और भागवतम में क्या भगवान की लीला है, तो जब हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं तो हृदय के अंदर जो रजोगुण है तमोगुण है काम है क्रोध है लोभ है वो सब स्वतः सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा, चेत एतय रनावृद्धिम, अब जो हृदय है वो इनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह रजोगुण तमोगुण इनसे नहीं प्रभावित नहीं होगा। फिर क्या होगा, स्थितम सत्वे प्रसीदति, फिर वो सतोगुण में स्थित हो जाएगा। क्योंकि सतोगुण में जब जीव स्थित हो जाएगा हृदय, तो फिर आनंद का अनुभव करेगा। आज हम भगवान की कथाओं में आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक रजोगुण और तमोगुण के भाव को निकलने नहीं दे रहे हैं, अभी तक खिड़की को पूरा खोल के सूर्य प्रकाश को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, हृदय को अभी तक भगवान के प्रेम में नैष्ठिकी भक्ति को अभी तक उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अर्जुन ने कह दिया कि मैंने मान लिया, तुमने जो कुछ बोल दिया था आपने जो कुछ कहा उसको मैंने एज इट सत्य मान, श्लोक नंबर 14 में बताया अर्जुन ने, सर्वम एतद्रतम मन्ये यन्माम वदसि केशवा, हे केशव तुमने जो कुछ बताया सर्वम एतद् वो सारा का सारा मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मन्ये मैंने वो सब स्वीकार किया, मैं जानता हूँ नहीं थे भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, आपको ना तो देवता समझ सकते हैं ना ही दानव समझ सकते हैं, केवल स्वयं वात्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, केवल आप ही अपने आप को समझ सकते हो, केवल आप ही अपने विषय में बता सकते हो और मेरा कल्याण केवल आपके विषय में श्रवण करने में है। अब मुझे भौतिक आसक्ति समाप्त हो गई है, युद्ध हो या ना हो, विजय मिले या ना मिले, मेरा कल्याण तो तुम्हारे विषय में श्रवण करने से है, इसलिए विस्तरेण आत्मना योगम। अब आप मुझे विस्तार से बताओ, क्योंकि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ और जो जीव अपना कल्याण करना चाहता है, वास्तव में शास्त्र आज हमें ये सिखा रहा है कि वास्तविक कल्याण केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने से ही हो सकता है। अभी क्योंकि हमारे हृदय में संसार की कुछ वस्तुओं में आसक्ति है, कुछ वस्तुओं में आनंद आ रहा है और हम समझते हैं कि इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमें सुख मिलेगा, इसी के कारण हम भगवान की कथाओं में आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब संसार की आसक्ति से मुक्ति हो जाती है, तब फिर जब व्यक्ति को भक्ति में आनंद लगने लगता है तो भगवान से केवल एक ही इच्छा करता है। जैसे महाप्रभु बताते हुए कहते हैं, न धनम न जनम न सौंदर्यम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर अहितुकी त्वये। हे भगवान, मुझे अच्छा जन्म नहीं चाहिए, ना ही मुझे बहुत ज्यादा धन चाहिए, ना ही सुंदर स्त्री चाहिए और ना ही बहुत सारे प्रशंसा करने वाले सेवक चाहिए। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे, मुक्ति भी नहीं चाहिए, बारंबार जन्म दे दो, परंतु भवतात् भक्तिर अहितुकी त्वये, आपकी भक्ति चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहेंगे, श्रवण करते 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 हृदय के अंदर जो अपराध है वो नष्ट हो जाएंगे। अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति जो है वो, भगवान का प्रेम जो है वो हृदय के अंदर पहले से ही है, लेकिन वो जागृत हो जाएगा। और जब हृदय के अंदर भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा, फिर रजोगुण तमोगुण और ये जो सब अनर्थ है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह से एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, और हृदय जब प्रसन्न हो जाएगा तो भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो होने लगेगा। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। जब हमको भगवान का तत्व ज्ञान होने लगेगा कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कृष्ण किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो भगवान के अनुभव करने लगते हैं, भगवान हम अपने हृदय में भगवान का अनुभव करने लगते हैं। और इस प्रकार जब अनुभव करने लगते तो उस समय हृदय की जो ग्रंथि है वो टूट जाती है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि है वो क्या है? जैसे इस भौतिक जगत में भौतिक विषय भोगों को भोगने की जो प्लानिंग्स हम करते रहते हैं, लालसाएं हैं, तो वो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, और हमारे सारे संशय मिट जाते हैं और भौतिक वस्तुओं को भोगने की जो लालसा है वो समाप्त हो जाती है, रियलाइज करने लगते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और जब हम भगवान के इस करुणामय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं तो हृदय संतुष्ट हो जाता है। फिर हम अपने आप को भगवान के शरण में लेते हैं। पहले हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, लेकिन फिर हमें ऐसा लगता है कृष्ण भोक्ता है। और जब एक बार आपको ये रियलाइज हो जाए कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, जब ये जीव जान जाता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जो कर्मों का जो बंधन है वो टूट जाता है। वास्तव में भक्तों, ये कर्मों का बंधन है ना, इसी के कारण हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है इस भौतिक जगत में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम, इतने दुखों को भोगना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्टों को झेलते 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 हम दुखी होते रहते हैं। उसका कारण यही है कि कर्मों का जो बंधन है वो नहीं टूट रहा। और कर्मों का बंधन क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि कर्मों के फलों में आसक्ति बनी रही है। अभी तक कर्मों को कृष्ण प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा, इसलिए भगवद गीता कहती है यज्ञार्थात कर्मणों नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। जब तक तुमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना शुरू नहीं किया तब तो तुम्हें वो सारे कर्म बांधेंगे और तुम्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में। अब देखो भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी श्रवण करते हैं, हम कुछ भी श्रवण करते किसी भी व्यक्ति के विषय में श्रवण करते हैं तो वो कर्म बन जाता है, वो कर्म बंधन का कारण बनता है। अभी आप अगर न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, उसने ये किया उसने ये किया, उसको सुनने के बाद हमारे भाव प्रकट होते हैं, फिर उसके विषय में बात करना, उससे क्या होता है जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक वो सदैव क्या करता रहता, टर 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 करता रहता है और फिर सांप आके उसको निगल देता है। उसी तरह से हम भी यदि भौतिक वस्तुओं के विषय में चर्चा करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, हर एक क्षण हर एक घंटा हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी आयु का एक घंटा कम हो गया और अभी जो काल है वो और करीब आ गया, तो फिर अभी ये काल से बचाने का, बारंबार मृत्यु के चक्कर से बचाने का एक ही तरीका है कि हम भगवान की कथाओं को श्रवण करें। भौतिक वस्तुओं को श्रवण करके हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वही काम जब कृष्ण करते हैं तो कृष्ण की कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय के अंदर जो मलिनता है वो समाप्त हो जाती है, जो अभद्र है वो समाप्त हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है जो कि जीव की वास्तविक स्थिति है। वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, श्रवण करने से। इसीलिए अर्जुन आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भूय कथे अतृप्त रही शुणवतो नास्ति निमृतम, आप अपने उस अमृत को मुझे बार बार और भी अधिक विस्तार से सुनाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। वास्तव में भक्तों जब भगवान की कथा को श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है ना, जीव का सबसे बड़ा कल्याण इसी में है। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोगों को भौतिक बातें सुनने में बहुत आकर्षण होता है, कोई आपके घर पे आ जाए एक घंटा बैठे आराम से उस इधर की उधर की बातें बताए, उसने ये कर दिया, उसकी बेटी ने ये किया, उसके बेटे ने ये किया, वो उसका कारोबार चौपट हो गया, उसको इतना मिल गया, उससे उतना लॉस हो गया, ये बातें आपको इतनी आनंद देती हैं कि आपका एक घंटा दो घंटा किस तरह से गुजर जाता आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन आप एक घंटा यदि सत्संग में बैठते हैं तो समय को बार बार देखते हैं कि इतनी लंबी सत्संग है। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कृष्ण की कथाओं के प्रति हमें आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये एकमात्र तरीका है हमें भगवान के प्रेम को अपने हृदय में पुनः जागृत करने का कि हम भगवान की कथाओं को श्रवण करें। तो भले ही आनंद नहीं भी आए ना तो भी हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों का संग दो जिससे हम श्रवण करते 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 हमारा जो भव रोग है वो समाप्त हो जाए और हमें भगवान की कथाओं में आनंद आने लगे। क्योंकि इसके अतिरिक्त जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, हम कीर्तन भी नहीं कर सकते, जब हम कीर्तन नहीं करते तो हम स्मरण भी नहीं कर सकते। तो जिसके विषय में श्रवण करेंगे उसी के विषय में प्रेम उत्पन्न होगा। तो क्योंकि कृष्ण प्रेम उत्पन्न करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस जीवन का, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करने की इच्छा, तीव्र इच्छा अपने मन में बनाए रखनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे साथ भगवान की इन अमृतमयी कथाओं को श्रवण करते रहिएगा। हरि बोल।